सहजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदावि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्याय
लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था दो दो सेक्शन हमने डिस्कस किए थे. एक तो गमाजी और नारद मुनि का संवाद जो कि श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो में आता है दूसरे स्कंद में, और नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि ब्रह्मा जी सुप्रीम है कि नहीं, और उसके उसके उत्तर में ब्रह्मा जी बताना प्रारंभ करते हैं. और दूसरा सेक्शन हमने देखा था जहाँ पे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे. ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और तपस्या के बाद नारायण ने उनको दर्शन दिए. और चतुर्श्लोक की भागवतम भी हमने देखा था, श्रीमद भागवतम के ओरिजिनल चार श्लोक जिसमें से पूरे भागवतम को एक्सपेंड किया गया है, तो वो श्लोक हमने लास्ट वीक देखे थे. और सेकंड कैंटो के लास्ट में जब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी जब बताते रहते हैं कि किस प्रकार से भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और भागवतम का ज्ञान दिया, तो उसी समय श्री परीक्षित महाराज को ये प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड किस प्रकार से जनरेट हुआ, और डिटेल में वो सुनना चाहते हैं, भौतिक संसार का जो क्रिएशन है उसके बारे में सुनना चाहते हैं, और थोड़ा डिटेल इंक्वायरी करते हैं कि किस प्रकार से भौतिक तत्व तो आते हैं और साथ साथ इस संसार में क्यों भौतिक संसार का सृजन भगवान क्यों करते हैं, और महातत्व तो क्या कहलाता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं वो. और उसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी जब बताते हैं कि सेम प्रश्न विदुर ने मैत्रेय मुनि से किए थे, और उनका उत्तर मैत्रेय मुनि ने जो विदुर को दिया था वही उत्तर मैं आपको सुनाता हूँ. तो इस तरह से विदुर मैत्रेय का प्रसंग आता है, और विदुर मैत्रेय का प्रसंग और दो श्रीमद भागवतम के दो कैंटो इसमें कवर होते हैं, तीसरा कैंटो और चौथा कैंटो. तो ये विदुर मैत्रेय संवाद श्रीमद भागवतम का एक हुआ, शायद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज और सुत गोस्वामी के बाद सबसे बड़ा संवाद यही होगा जो कि दो स्कंद तक चलता है. और तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी के क्रिएशन के बारे में करीब शुरू के 10 अध्याय में बताया जाता है, 11 अध्याय में. और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन आता है कि हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष किस प्रकार से जय विजय जो थे वो दो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष में बदले, और फिर कश्यप मुनि की जीनियोलॉजी बताई जाती है, वराह देव के द्वारा हिरण्याक्ष का वध बताया जाता है, और उसके बाद फिर स्वयंभू मनु जो पहले मनु थे उनके वंश की स्टोरी प्रारंभ होती है, उनकी पुत्रियों की स्टोरी से प्रारंभ करते हैं. स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति प्रसूति और देवहूति, और 2 पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत. तो श्री सुखदेव गोस्वामी पहले भगवान कपिल की शिक्षाएं जो कि देवहूति के पुत्र हैं उनसे स्टार्ट करते हैं. तो इस तरह से तीसरा स्कंद है, और फिर तीसरे स्कंद के बाद चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद के वंश का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, और पंचम स्कंद में प्रियव्रत के वंश का डिस्क्रिप्शन किया जाता है. इस प्रकार से 3 स्कंद आते हैं, और ये विदुर और मैत्रेय और उद्धव, पहले विदुर उद्धव से मिलते हैं उसके बाद मैत्रेय से मिलते हैं. तो ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है, सबसे पहला अध्याय प्रारंभ होता है कि जब पांडव वनवास से वापस आ चुके हैं, वनवास और अज्ञातवास से वापस आ चुके हैं, और युधिष्ठिर महाराज आने के बाद अपना शेयर मांगते हैं कि अगर आप हमें पूरा नहीं देना चाहते हैं, पूरा मतलब आधा राज्य देना नहीं चाहते हैं, तो कम से कम 5 गांव दे दीजिए। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज डिमांड करते हैं, और वो डिमांड भी दुर्योधन के द्वारा नकार दी जाती है। दुर्योधन बोलते हैं कि एक सूर्य के नोक के बराबर भूमि भी आपको नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद युद्ध जो है वो इनेविटेबल हो जाता है। और इसी बीच का एक प्रसंग है कि दुर्योधन को मनाने के लिए धृतराष्ट्र अपने भाई को बुलाते हैं, विदुर को बुलाते हैं। विदुर एक्चुअली उनकी माँ अलग है, पिता समान है, व्यासदेव के पुत्र हैं, और माँ जो थी वो अम्बा अंबिका अंबालिका की जो दासी थी वो उनकी माँ थी, तो इसलिए विदुर जो है वो दासी पुत्र भी कहे जाते हैं, और दुर्योधन इसी नाम से उनको बुलाता भी है बाद में। तो ओरिजिनली धृतराष्ट्र का पर्पज रहता है विदुर को बुलाने के लिए कि किसी भी तरह से वो दुर्योधन को समझा के युद्ध खत्म कर सके, क्योंकि विदुर बहुत फेमस पॉलिटिशियन माने जाते हैं। संसार में 2 पॉलिटिशियन बहुत फेमस है, विदुर और चाणक्य। दोनों ने अपनी अपनी नीतियां लिखी है, विदुर नीति और चाणक्य नीति। तो जब धृतराष्ट्र बुलाते हैं विदुर को, तो विदुर आते ही साथ धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि आपने एक्चुअली एक असुर, इस तरह से भागवत में आता है ऑफेंस पर्सोनिफाइड, ऐसा व्यक्ति जो लगातार अपराध या पाप करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को आपने अपने घर में रखा हुआ है। और विदुर उनको सावधान भी करते हैं कि ये दुर्योधन जो है ये आपके निकाल देना चाहिए, ये कुल का कलंक है, इसको आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, ऐसा वो दुर्योधन की प्रेजेंस में सलाह देते हैं। इसलिए व्यासदेव इन 4 लोगों को दुष्ट चतुष्टया बोलते हैं, 4 दुष्ट, महाभारत के 4 महान दुष्ट, उसमें से एक दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी है और कर्ण है। दुर्योधन उस वृक्ष के मेन ट्रंक, मेन तना माना जाता है, और कर्ण जो है वो उसकी ब्रांच, सबसे मोटी ब्रांच मानी जाती है, और शकुनी भी उसकी एक ब्रांच मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 लोगों के सामने जब विदुर ये अपने भाई को मतलब धृतराष्ट्र को इस प्रकार से बताते हैं कि दुर्योधन आपके वंश का विनाश कर देगा, उसको तुरंत आप त्याग दीजिए, और पांडवों से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पांडवों के साथ भीम भी है, अर्जुन भी है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े योद्धा है, और उनके साथ साथ भगवान कृष्ण भी है। इस प्रकार से पहले अध्याय में आता है कि भीम जो है वो उसी तरह से अभी क्रोधित है जिस तरह से कोई सांप जो होता है उसको अगर कोई छेड़ देता है तो सांप क्रोधित हो जाता है, उसी तरह से भीम क्रोधित है। और तो ये सुन के फिर चारों के चारों जो थे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली दुर्योधन बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसी पहले इसका अंदर डिस्क्रिप्शन आता है कि दुर्योधन के होंठ कांपते रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा में है, और तुरंत वो इनका इंसल्ट करना चालू करता है, बोलता है कि ये दासी पुत्र को कौन यहाँ पे लेके आया, ये जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, हमारा अन्न खाता है परंतु हमारे असुरों का पक्ष लेता है, इसको तुरंत महल से बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार से दुर्योधन बोलते हैं, एक्चुअली नॉर्मली उनको चाचा बोलते थे, अंकल बोलते थे, परंतु दुर्योधन के इतने ज्यादा अपमानजनक शब्दों को सुन के विदुर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार से वो पहले अंकल बोलते थे और अभी इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो विदुर कुछ पल के लिए अचंभित हो जाते हैं, पर वो फिर समझ जाते हैं कि भगवान की माया शक्ति ऐसे कार्य कर रही है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई भगवान के योग माया शक्ति को समझ लेता है तो उसके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं होता है। विदुर के साथ देखा जाए तो बहुत गलत हुआ जिस तरह से उसके साथ ट्रीट किया गया, परंतु विदुर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मन ही मन विदुर ने दुर्योधन को एटलीस्ट दुर्योधन को धन्यवाद भी दिया कि बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अलग अलग तीर्थों का दर्शन कर सकूं। और भगवान को भी धन्यवाद देते हैं कि भगवान मैं इस महल में रहते रहते पॉलिटिक्स इन सब चीजों में फंसा हुआ था, आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला, ऐसा बोल के वो राजमहल छोड़ के चले जाते हैं, अपना अपना धनुष और बाण वहीं पे रख के चले जाते हैं। और उसका मतलब है कि उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया है और जाके फिर तीर्थ भ्रमण में जाते हैं। वो चाहते तो सीधे द्वारका जा सकते थे भगवान कृष्ण के पास, परंतु विदुर इतने विनम्र थे कि उन्होंने सोचा कि मैंने राजमहल में रहा हूँ, इतने पाप किए हैं, तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ कि भगवान कृष्ण की जाके डायरेक्टली सेवा कर सकूं, तो पहले मुझे अलग अलग धाम में तीर्थ में जाके अपने आप को शुद्ध करना होगा, तब मैं भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा सोच के विदुर बाहर चले जाते हैं और विदुर अलग अलग तीर्थों में जाते हैं। प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि 5,000 साल पहले भी बहुत बड़े बड़े मंदिर थे और वो मंदिर भी बहुत पुराने थे। तो जो लोग इस प्रकार से प्रोपगेट करते हैं कि ये मंदिर बनाने की प्रथा अभी चालू हुई, श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जब से सृष्टि है तब से भगवान के दर्शन करने के लिए उनके भक्त मंदिर बनाते हैं। तो विदुर कई तीर्थों में जा रहे हैं, अयोध्या, प्रयाग, द्वारका, मथुरा, और जब जा रहे हैं तो पूरा रास्ता हो चुका है, अभी सन्यासी के रूप में, साधु के रूप में जाते हैं। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि उनके रिश्तेदार या कोई उनको पहचान नहीं पाए कि हस्तिनापुर की मंत्री विदुर है, क्योंकि विदुर फेमस थे, हस्तिनापुर पूरी दुनिया का राजधानी था और विदुर वहां पे फेमस थे। तो विदुर इस प्रकार से जाते हैं एक साधु के वेश में, और ऐसे जाते जाते जब वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं, सौराष्ट्र में प्रभास में, तब उनको पता चलता है कि यदु वंश खत्म हो चुका है, यदु वंश का विनाश हो चुका है। और उसके बाद वो सरस्वती नदी के साथ साथ दक्षिण दिशा में जाते रहते हैं, और एट लास्ट जाते जाते वो मत्स्य देश पार करते हैं, सौवीर देश पार करते हैं, कुरु जंगल पार करते हैं और यमुना नदी पहुंचते हैं, मतलब ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंचते हैं। और यमुना नदी के पास पास उनको उद्धव मिलते हैं, उद्धव जो कि एग्जैक्टली भगवान कृष्ण जैसे हैं, उनका रूप भी भगवान कृष्ण के जैसा है। जब उद्धव वृंदावन भी गए थे तो सबसे पहले जिन्होंने उनको देखा उनको लगा कि ये कृष्ण फिर से आ गए, क्योंकि उद्धव का रूप भगवान के जैसा है, भगवान के बारे में लगातार सोचने के कारण उद्धव एग्जैक्टली भगवान जैसे हो गए, भगवान के जैसा उनका स्वरूप हो गया है। और उद्धव बृहस्पति के शिष्य भी थे, तो बहुत बड़े शास्त्रिक विद्वान और बहुत बड़े भगवान के भक्त भी थे। तो जब विदुर उद्धव से मिले, इन दोनों की उम्र में बहुत अंतर है, विदुर तो उद्धव के पिता के समान है, विदुर बहुत ओल्ड है और उद्धव उनके पुत्र के समान है। तो जब ये मिलते हैं तो विदुर जो है वो उद्धव को गले से लगाते हैं और पूछते हैं कृष्ण के बारे में, हालांकि इनको पता चल चुका रहता है कि यदुवंश चला चुका है, मतलब इस संसार से चले गए हैं, तब भी ये मैत्रेय से ये उद्धव से पूछते हैं। प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि कई बार कोई दुख की खबर होती है तो व्यक्ति दूसरी बार चाहता है उसको कि दूसरी बार पता करे कि ये सही है कि नहीं, और इस विचार से वो उद्धव से फिर से पूछते हैं कृष्ण के बारे में, बलराम के बारे में, बाकी यदुवंशियों के बारे में, कुंती देवी के बारे में, पांडवों के बारे में। धृतराष्ट्र के बारे में नहीं पूछते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि धृतराष्ट्र तो ऑलरेडी पतित हो गया है और पतन की तरफ ही जा रहा है, तो धृतराष्ट्र की खुशी के बारे में नहीं पूछते हैं, धृतराष्ट्र के वेलफेयर के बारे में नहीं पूछते, पांडवों के बारे में पूछते हैं। और ओके, यहाँ पे आगे भी लिखा है कि विदुर को ऑलरेडी पता है कि भगवान संसार से चले गए हैं, परंतु तब भी वो पूछते हैं कन्फर्म करने के लिए। और जब विदुर इस प्रकार से प्रश्न करते हैं उद्धव से, तो उद्धव को भगवान कृष्ण की याद एकदम ताजा हो जाती है, और भगवान कृष्ण से विरह के कारण उद्धव कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, उनकी आंख पूरा गला चोक हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि उद्धव दूसरे प्लेन में चले गए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। वास्तविकता में उद्धव पूरी तरह से कृष्ण की विरह भावना में डूबे हुए थे। तो कुछ देर तक उद्धव कोई भी आंसर नहीं देते हैं, और उसी समय विदुर इनको देखते हैं कि उद्धव भगवान के बारे में सोचने में इतना ज्यादा डीप जा रहे हैं कि उनको बाहर का कोई सिम्टम नहीं है, और सारे जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो भी उद्धव के अंदर आने लगते हैं, और पूर्ण कृष्ण प्रेम की अवस्था के दर्शन विदुर को होते हैं। क्योंकि उद्धव जब 5 साल के थे तब से वो कृष्ण में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब थे कि उनकी माँ जब उनको ब्रेकफास्ट के लिए या भोजन के लिए बुलाती थी तो उतना देर भी वो भगवान से दूर नहीं रह पाते थे। उनके पास भगवान कृष्ण की डॉल्स मतलब गुड़िया गुड्डे गुड़िया भी कृष्ण के थे और उनको हमेशा वो ड्रेस कराते थे, भोजन खिलाते थे और उनकी पूजा करते थे हमेशा 5 साल के जब बच्चे थे, और वो छोड़ के वो भोजन खुद भोजन करना भी पसंद नहीं करते थे। इस तरीके से उद्धव कृष्ण से इतना ज्यादा अटैच थे। और कुछ समय तक इस अवस्था में रहने के बाद उद्धव फिर नॉर्मल अवस्था में वापस आते हैं और फिर विदुर को बताना चालू करते हैं। और ये सेक्शन श्रीमद् भागवतम का वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट सेक्शन में से एक है, जब उद्धव कृष्ण की लीलाओं को डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये डिस्क्राइब और दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में भी ये डिस्क्रिप्शन है। दूसरे अध्याय में मोस्टली दूसरे अध्याय में ये श्लोक है, तीसरे कैंटो के दूसरे अध्याय में। और ये प्रारंभ करते हैं कि इस संसार के सूर्य भगवान कृष्ण अभी अस्त हो चुके हैं, तो जब भगवान कृष्ण संसार से चले गए तो फिर इस संसार के भले के बारे में क्या पूछना है, इस संसार का कोई भला नहीं हो सकता। ये पूरा ब्रह्मांड के बहुत दुर्भाग्यशाली है और ब्रह्मांड से भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली है यदुवंश के लोग, जिन्होंने कृष्ण को खो दिया है। और जो जब कृष्ण उनके बीच में थे तो वो ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यदुवंश के लोगों को भागवत में इसी में परपोट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि यदुवंश के कई लोग समझते थे कि कृष्ण जो है वो परमात्मा के एक्सपेंशन है, वो कभी समझ नहीं पाए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उसी तरह से जैसे मछली भी समुद्र में रहती है और चंद्रमा भी देखने से ऐसा लगता है कि समुद्र से निकला है, तो मछली सोचती है कि चंद्रमा हमारी फैमिली का है। इसी तरह से जब कृष्ण यदुवंश में आए तो हालांकि कृष्ण चंद्रमा के जैसे हैं, परंतु यदुवंश के लोगों ने सोचा कि कृष्ण भी यदुवंशी में से एक हैं। इसलिए यहाँ पे उद्धव बोल रहे हैं कि यदुवंशी लोग और ज्यादा दुर्भाग्यवश हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी है। तो शुद्ध भक्त होने के कारण उद्धव यदुवंश के मेंबर्स के लिए भी लेमेंट करते हैं, क्योंकि यदुवंश के लोग केवल इतना समझ पाए कि कृष्ण परमात्मा है जो कि उनके घर में आए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम तरीके से नहीं समझ पाए। उसके आगे उद्धव बताना चालू करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सारे के सारे देवता आए थे और कृष्ण के सुंदर शारीरिक रूप को देखने के बाद देवताओं ने ऐसा सोचा कि कृष्ण जो है वो संसार के सबसे ब्रह्मा से ज्यादा सुंदर है। इस प्रकार से देवता एक दूसरे से बोल रहे थे, क्योंकि देवताओं को पता भी नहीं है, कई देवताओं को इतना अंदाजा नहीं है कि कृष्ण ब्रह्मा के क्रिएशन में नहीं है। ब्रह्मा जी कृष्ण को बना नहीं सकते, कृष्ण ने ब्रह्मा को बनाया है। और फिर उद्धव बताते हैं कि जब ऐसे इतने शक्तिशाली कृष्ण के बारे में सुनता हूँ कि वो कंस के डर से वृंदावन में जाके रहते थे, तो मुझे आश्चर्य होता है कि कृष्ण इस प्रकार से लीलाएं करते हैं कि सभी के सभी लोग उनसे विचलित हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, लोग भयभीत हो जाते हैं, कुछ लोग कृष्ण को सामान्य समझने लगते हैं। तो कृष्ण की लीलाएं बहुत इस प्रकार से है कि लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद उद्धव आगे श्लोक में बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब वापस आते हैं देवकी और वसुदेव के पास, तो उनसे माफी मांगते हैं कि वो उनकी सेवा नहीं कर पाए। और भगवान जब इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो मुझे भगवान की याद और ताजा हो जाती है। इसमें भागवत के श्लोक में आता है कि इस व्यवहार से उद्धव को दुख होता है, परंतु ये दुख ऐसा दुख नहीं है, ये दुख है कि भगवान की कोई भी लीला जिससे कि भगवान की याद उनको और ज्यादा तीव्र हो जाती है, उसके कारण उनका दुख बढ़ जाता है। क्योंकि भगवान के विरह में है तो भगवान के जो सुंदर सुंदर गुण है, इतने ये सारे सुंदर गुण जब उनके दिमाग में आते हैं तो उनको लगता है कि इतने सुंदर व्यक्ति मेरे साथ में थे और मैं अभी उनको खो दिया, उनका एसोसिएशन खो दिया। इस प्रकार से उद्धव सोच रहे हैं, तो उनका भगवान के विरह के कारण सारी लीलाओं को डिस्कस कर रहे हैं। और फिर आगे बताते हैं कि किस प्रकार से शिशुपाल को भगवान ने ब्रह्म ज्योति में लीन हुए। और इसके बाद एक श्लोक आता है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था शायद, वो श्लोक इस बहुत फेमस श्लोक है भागवत का। वो श्लोक इस प्रकार से है, तथै वचान्यं नरलोक वीरा याहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्तो नयनाभिराम पार्थास्तु पूत पद्मा पुरस्य। इस श्लोक का मीनिंग है तथैव चान्यम नरलोक वीरा। इस संसार में जितने बड़े बड़े वीर पुरुष थे, महान पुरुष थे, या आहवे कृष्ण मुखारविंदम, जब वो अर्जुन से युद्ध करते थे तो कृष्ण के मुखारविंद को देखते थे। वो अपॉर्चुनिटी अर्जुन के पास भी नहीं थी क्योंकि अर्जुन कृष्ण के पीछे थे और जो सामने से युद्ध करता था उनको कृष्ण का फेस दिखाई देता था। तो संसार के बड़े बड़े वीरों ने कृष्ण का फेस देखा महाभारत में बहुत लंबे समय तक युद्ध के समय जब वो अर्जुन से लड़ाई करते थे। और नेत्र पिबंतो नयनाभिरामा, जब कृष्ण के सुंदर मुख को देखते थे, मुखारविंद का मतलब कमल के जैसे सुंदर मुख को देखते थे, तो अपने आंखों से उस सुंदरता को पीते थे। नेत्र पिबंतो नयनाभिरामा, इतने अपनी आंखों से उस कृष्ण की सुंदरता को पीते थे। और पार्थास्त पूतः पद्मापुरस्य, और साथ साथ पार्थ मतलब अर्जुन के अस्त्र जब उनको लगते थे तो अर्जुन के अस्त्र लगने से उनके पाप खत्म हो जाते थे। भगवान के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि अर्जुन के तीर जिसको लगते थे उसके पाप खत्म हो जाते थे, वो मुक्त हो जाता था। तो भगवान ने वो सारी शक्ति अर्जुन में दे दी थी जो भगवान के पास डायरेक्टली शक्ति होती है। अगर भगवान किसी को मारते हैं तो पाप से मुक्त हो जाता है, भगवान ने वही शक्ति अर्जुन को दे दी थी। अर्जुन के तीर जिसको लगते थे उसका पाप खत्म हो जाता था, वो मुक्त हो जाता था। पार्थास्त पूतः पद्मापुरस्य, अर्जुन के अस्त्र से पवित्र होके वो परम धाम को चले गए, संसार के बड़े बड़े वीर पुरुष जो थे। और भी लीलाएं डिस्कस कर रहे हैं वो कि वही भगवान कृष्ण उग्रसेन के सामने खड़े रहते थे और उग्रसेन को राजा बोल के प्रणाम भी करते थे, उनके सामने झुकते थे। और इतने ज्यादा कृपामय भगवान कृष्ण थे, उनके अलावा और कौन कृपामय होगा। और फिर एक और फेमस श्लोक आता है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयाप्य। उस श्लोक का मीनिंग है कि भगवान इतने दयालु हैं कि जो पूतना उनको जहर देने के लिए आई थी उसको भी भगवान ने आध्यात्मिक संसार में अपनी नर्स के जैसा स्थान दिया। तो भगवान से ज्यादा और कौन दयालु हो सकता है। और साथ में बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो डीमंस थे, जो राक्षस लोग थे, ये ज्यादा फॉर्चुनेट थे क्योंकि ये हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान उनको मार देते हैं, वो आध्यात्मिक संसार में चले जाते हैं। तो ये राक्षस लोग कितने ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि इनको भगवान के हाथ से मृत्यु प्राप्त होती है। और इसके बाद जब विदुर की इच्छा थी भगवान के बारे में सुनने के लिए, तो उद्धव भगवान कृष्ण ने जो 11 साल तक भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, तो 11 साल तक उन्होंने जो लीलाएं की वो लीलाएं उद्धव शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले वृंदावन की लीलाएं, उसके बाद द्वारका की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, फिर द्वारका की लीलाएं डिस्कस करते हैं। और जब महाराज युधिष्ठिर, वृंदावन की लीलाएं एक्चुअली डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे पहुंचेंगे, क्योंकि वृंदावन की बहुत सारी लीलाएं आपको आता भी है और उद्धव ने बहुत एक एक दो दो श्लोकों में बहुत कम बताया है कि वृंदावन में अलग अलग राक्षसों का उन्होंने वध किया, रासलीला की, उसके बाद कंस को मारने के लिए मथुरा जाते हैं, मथुरा के बाद फिर द्वारका जाते हैं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब महाराज युधिष्ठिर धरती पे राज्य करते रहते हैं उस समय भगवान कृष्ण द्वारका में राज्य करते हैं। तो भगवान यद्यपि पूरी धरती के राजा हैं परंतु वो अपने भक्त के सबॉर्डिनेट राज्य करते हैं। युधिष्ठिर संसार के राजा थे, युधिष्ठिर के अंडर में भगवान कृष्ण थे द्वारका के राजा के रूप में। और फिर भगवान इस तरह से गृहस्थ आश्रम में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और उसके बाद फिर भगवान उद्धव से बोलते हैं कि आप द्वारका अभी जल में डूबने वाला है, 7 दिन के बाद आप यहाँ से बद्रिकाश्रम चले जाइए। और उद्धव मैत्रेय दोनों को भगवान संदेश भी देते हैं, एक्चुअली उद्धव को भेजते हैं। उसके बाद फिर वो सारी जो लीला होती है मौसल लीला, वो मौसल लीला भागवतम में 11वें स्कंद में आती है, 11वें स्कंद के अंत में आती है। तो वो डिस्कशन जब वहां पे आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। पर उस समय फिर यदुवंश को भगवान विनाश करते हैं और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं, वहां पे उद्धव फिर से पहुंचते हैं। और उसी जगह पे भगवान की इच्छा से ही मैत्रेय ऋषि भी पहुंचते हैं। तो यद्यपि उद्धव भगवान के शुद्ध भक्त थे उस समय, परंतु मैत्रेय भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे उस समय। और भगवान ने जो सुनाया वो उद्धव को सुनाया, मैत्रेय ने तो बैठ के सुना साथ में, और सुनने के बाद मैत्रेय मुनि शुद्ध भक्त बन गए। उसके बाद फिर भगवान ने मैत्रेय मुनि को बोला कि आप आगे जाके विदुर को ये ज्ञान दीजिएगा। और भगवान ने उद्धव को ये उपदेश दिया था कि आप जाइएगा और बद्रिक आश्रम में जो ऋषि मुनि हैं उनको ये ज्ञान सुनाइएगा, क्योंकि भगवान ने बोला उद्धव से कि मैं सब जगह गया, बहुत सारी जगह गया, परंतु बद्रिक आश्रम नहीं जा पाया, इसलिए मेरी तरफ से मेरे प्रतिनिधि बन के आप ये ज्ञान वहां के ऋषि मुनियों को आप सुनाइएगा। ऐसा बोल के उद्धव शांत हो जाते हैं। और फिर जब इसमें थोड़ा और डिटेल डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा, कि भगवान एक छोटे से बरगद के पेड़ के पेड़ की तरफ झुक के बैठ जाते हैं। ये छोटा बरगद का पेड़ दिखाता है कि ये ब्रह्मांड जो है ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और ये भौतिक संसार एक्सटर्नल है, क्योंकि भगवान का जो पीठ है वो वृक्ष से लगी रहती है, मतलब भगवान के बैक साइड में ये भौतिक संसार होता है, फ्रंट साइड में आध्यात्मिक संसार होता है। भगवान का रूप घनश्याम के समान है, बहुत सुंदर रूप है, उनकी आंखें बहुत शांत हैं, और जिस प्रकार से जब सूरज मॉर्निंग में जब सूरज सूरज उठता है तो उस समय सूरज एकदम क्या बोलते हैं, लालिमा बोलते हैं, सूरज के उगने के पहले जो आकाश लाल होता है बहुत सुंदर प्रतीत होता है, तो भगवान की आंखें उसी प्रकार से सुंदर है, जिस प्रकार से हल्का हल्का लाल लालिमा आकाश में रहती है। और उद्धव वहां पे भगवान से मिलने आते हैं, उस समय भगवान की दो भुजाएं नहीं होती है, चार भुजाओं का रूप में भगवान होते हैं, और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उसी समय वो संसार मतलब अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग के इस संसार से अपनी लीलाओं को एंड करके जा रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। उद्धव भगवान के सामने अपना सिर झुकाते हैं और मैत्रेय ऋषि भी वहीं पे आ जाते हैं, और उद्धव को वहां पे रेस्ट कराने के बाद भगवान मैत्रेय मुनि और उद्धव की प्रेजेंस में उद्धव गीता सुनाते हैं। उद्धव गीता का जो पूरा पूरा कंटेंट है वो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में आता है। 11वां स्कंद जब हम डिस्कस करेंगे तब हम उद्धव गीता को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट मैटर है। उद्धव गीता को भगवद गीता से भी एडवांस माना जाता है। अगर भगवद गीता को हम ग्रेजुएशन बोलते हैं तो उद्धव गीता को पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, और वो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आती है। तो इस प्रकार से भगवान उद्धव से बात कर रहे हैं कि बहुत पहले आप एक वसु थे और आपकी इच्छा थी कि आप मेरा संग प्राप्त करें, हालांकि मेरा संग प्राप्त करना बहुत कठिन है लोगों के लिए, परंतु मैंने आपको ये अपना संग प्रदान किया, और अभी आपको ये श्योर होना चाहिए कि मेरा संग प्राप्त करके आपका ये जन्म जो है संसार में अंतिम जन्म है। इस प्रकार से भगवान उद्धव को बताते हैं, तो ये जन्म आपका लास्ट है और इस जन्म के बाद आप मेरे धाम में वैकुंठ में वापस आ जाएंगे। उद्धव इसका जवाब देते हैं कि हे भगवान, जो भी भक्त आपके चरणों की सेवा में रहते हैं उनको इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, परंतु मैं इन सबकी इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी दिव्य प्रेम भक्ति को चाहता हूँ। यद्यपि आपका ज्ञान असीमित है और आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, परंतु आप मुझे बुलाते थे जब आपको कोई फैसला लेना होता था, तो ये सब इंसिडेंट सुन के मैं थोड़ा विविल्ड होता हूँ। तो हे भगवान, मुझे मुझे समझाइए, मुझे बताइए कि कैसे मैं अपने बारे में जान सकूं, आपके बारे में जान सकूं, इस संसार के बारे में जान सकूं और आपकी दिव्य प्रेम भक्ति को जान सकूं। और उद्धव उस समय दुखी भी थे क्योंकि यदुवंश का विनाश हुआ था, तो भगवान समझ गए कि उद्धव दुखी हैं, और उद्धव के दुख को देखते हुए भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्रदान किया। और जब उद्धव जाने तो भगवान ने फिर उद्धव से बोला कि मैत्रेय मुनि जो है विदुर को ज्ञान प्रदान करेंगे, इनके साथ अगर विदुर आपसे मिलते हैं तो आप बताइएगा कि मैत्रेय मुनि उनको ज्ञान प्रदान करेंगे। इसीलिए जब विदुर ने और आगे का पूछा कि आप मुझे बताइए भगवान ने आपको और क्या क्या बताया, तो विदुर तो उद्धव ने बोला कि भगवान एक्चुअली मैत्रेय मुनि को बोला है कि वो आपको बताएंगे। इसका एक कारण भी था कि उद्धव और मैत्रेय की उम्र में बहुत अंतर था, उद्धव बहुत यंग थे और मैत्रेय बहुत ओल्ड थे, तो अगर कोई ओल्ड व्यक्ति या कोई सीनियर भक्त हमारे साथ है तो हमें नहीं बोलना चाहिए, तो वो एक मर्यादा व्यतिकरण कहलाता है, एक एटिकेट होता है कि अगर हमारे साथ में कोई सीनियर भक्त है तो हमें अपनी तरफ से दूसरे को गाइड नहीं करना चाहिए, उस सीनियर भक्त की तरफ उस व्यक्ति को भेजना चाहिए। तो जब विदुर ने पूछा मैत्रेय से ज्ञान के लिए, तो नहीं विदुर ने जब उद्धव से पूछा तो उद्धव ने बोला कि मैत्रेय मुनि पास में ही है, आप ऐसा करिए मैत्रेय मुनि के पास में जाइए, वो आपको सारा ज्ञान देंगे, क्योंकि भगवान ने उनको भी बोला है आपको ज्ञान देने के लिए। ऐसा बोल के उद्धव वहां से बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। भगवान के संसार से जाने के बाद केवल उद्धव यदुवंश में केवल उद्धव ही मेजर मेंबर के रूप में थे। भगवान ने उनको आदेश दिया था कि भगवान के बारे में जो दिव्य ज्ञान है वो लोगों को दे सके, क्योंकि भगवान उनको अपना सबसे बड़ा भक्त मानते थे। उद्धव जाके नर नारायण ऋषि को बद्रिकाश्रम में और बाकी लोगों को ये भगवान के ज्ञान का प्रदान करते हैं, और उद्धव उस रात में विदुर को और कुछ सुनाते हैं। ये दोनों लोग एक रात साथ में रहते हैं और उद्धव बताते हैं कि भगवान ने जाते समय आपको भी याद किया था। तो कितना विदुर इसको सुनकर रोने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं प्रेम के कारण। कितनी अमेजिंग चीज है, भगवान जब इस संसार से जा रहे थे, इस ब्रह्मांड से वापस जा रहे थे, तो उन्होंने विदुर को याद किया था, और विदुर को जब ये चीज पता चलती है कि भगवान ने मुझे याद किया था, तो विदुर बहुत खुश होते हैं, प्रेम के आंसू उनकी आंखों से आने लगते हैं। और उस रात में दोनों लोग साथ में रह के फिर उद्धव बद्रिकाश्रम के लिए चले जाते हैं, और विदुर कुछ समय यमुना नदी के किनारे रहते हैं। उसके बाद विदुर जो है वो हरिद्वार में चले जाते हैं गंगा किनारे, वहां पे मैत्रेय मुनि से मुलाकात होती है। और मैत्रेय मुनि से विदुर ऑलरेडी बहुत सिंसियर थे सुनने के लिए, और जब उन्होंने उद्धव से सुना था कि भगवान ने इस प्रकार से ज्ञान दिया, तो बहुत वेट कर रहे थे, बहुत ईगर थे सुनने के लिए भगवान के लीलाओं के बारे में। परंतु जब वो मैत्रेय मुनि के सामने आते हैं तो बिना मतलब सुनाइए, वो अपने आप को पतित व्यक्ति मानते हैं, तो सबसे पहले बेसिक स्पिरिचुअल टॉपिक्स पूछते हैं जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होगा सुनना, और पूछते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति मानव जीवन के लक्ष्य को समझ सकता है, और कैसे आध्यात्मिक जीवन में विकास किया जाए, मेरे जैसे लोग जो गृहस्थ आश्रम से उठ के आ रहे हैं उनको कैसे उतनी शुद्ध भक्ति तक पहुंचेंगे, भगवान किस प्रकार से लीलाएं करते हैं, ये बेसिक प्रश्न पहले करते हैं, क्योंकि वो विनम्रता के कारण अपने आप को पतित समझते हैं। हालांकि शुद्ध भक्त हैं परंतु विनम्रता के कारण अपने आप को पतित समझते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न करते हैं। और दूसरा एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार के लोगों को गाइड करने के लिए कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें मतलब रिलेवेंट चीजों को पूछना चाहिए। ये जानते हुए विदुर जी ये प्रश्न करते हैं, और मैत्रेय मुनि भी खुश होते हैं सुन के कि विदुर आप ऑलरेडी भगवान के इतने महान भक्त हैं, और आपकी विनम्रता बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है, और मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उन उत्तर को देने के बाद विदुर बताते हैं कि इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में कोई व्यक्ति कितना भी सुने परंतु उसको संतुष्टि नहीं मिल सकती। धर्म अर्थ काम मोक्ष इस संसार में किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, चाहे कितनी बार भी सुने। इसलिए फिर विदुर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए, जो कि महाभारत का सार है और सारे वेदों का सार है, वो कृष्ण कथा मैं सुनना चाहता हूँ। जो लोग भगवान की दिव्य कथाओं के बारे में नहीं जानते हैं उन पे तो दया आनी चाहिए, उनका स्थिति बहुत दयनीय है। और ऐसे लोग जो निराकारवादी हैं वो तो और भी डेंजरस पोजिशन में है, क्योंकि अपना जीवन पूरा वेस्ट करते हैं भौतिक क्रियाकलापों में, और शरीर के बॉडीली कॉन्सेप्ट में रहने के कारण अपना पूरा जीवन वेस्ट करते हैं। और इस प्रकार से जब विदुर और प्रश्न करते हैं तो विदुर उनको सजेस्ट करते हैं कि कहाँ से प्रारंभ करें। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं परंतु वो सजेस्ट करते हैं कि कहाँ से वो जानना चाहते हैं। तो विदुर पूछते हैं कि भगवान के पुरुष अवतार के बारे में आप मुझे बताइए, तो वहां से स्टार्ट होता है। इसमें हम देखेंगे बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन सिमिलर है जो कि ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में हुआ था, क्योंकि ये संसार के सृजन से संबंधित वस्तु है, परंतु थोड़ा सा और डिटेल में है ये। तो जब इस प्रकार से विदुर के प्रश्न पूरे होते हैं तो मैत्रेय मुनि फिर बताना चालू करते हैं कि हे विदुर, आपको आपकी जय हो, क्योंकि आपने भगवान के बारे में जो ये आध्यात्मिक प्रश्न पूछे हैं ये सभी संसार के कल्याण के लिए है, और आप ऑलरेडी भगवान को स्वीकार कर चुके हैं। आप श्रील व्यासदेव के पुत्र होने के कारण आप इस संसार में एक महानतम भक्त के रूप में हैं, और आप पहले यमराज थे, परंतु मांडव्य मुनि के श्राप के कारण आप यहाँ पे विदुर के रूप में हैं, और आप भगवान के एक नित्य भक्त भी हैं। जब भगवान अपने धाम जा रहे थे तो उन्होंने आपको याद किया था, और उन्होंने मुझे बोला था आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। मांडव्य मुनि की स्टोरी आप लोगों को आता होगा। मांडव्य मुनि के एक बहुत फेमस ऋषि थे। एक बार कुछ चोर राजा के घर से को चुराते हैं और मांडव्य मुनि के आश्रम में रख देते हैं, तो चोरों के साथ साथ मांडव्य मुनि को भी राजा अरेस्ट कर लेते हैं। और जब उनको भाले से उनके शरीर को चीरते रहते हैं, तो राजा के पास जब खबर पहुंचती है, राजा तुरंत आके मांडव्य मुनि को छुड़ाते हैं। तो इस समय से छूटने के बाद मांडव्य मुनि यमराज के पास जाते हैं और यमराज से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनको ऐसा क्यों झेलना पड़ा। और यमराज बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक चींटी को एक घास के तिनके के द्वारा उसके शरीर को काटने की कोशिश की थी। ऐसा सुन के ऋषि बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि 5 साल के पहले तक तो जो बच्चे होते हैं उनका कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनको कोई पुण्य या पाप कर नहीं लगता है। आप यमराज हैं परंतु उसके बाद भी आपने इस प्रकार से इमैच्योर कार्य किया, तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको एक शूद्र के रूप में जन्म लेना होगा। इस प्रकार से इनका विदुर का, यमराज का विदुर के रूप में आना होता है भौतिक संसार में। तो उसी समय कृष्ण लीला भी चलती रहती है, तो ऑलमोस्ट 125 वापस यमराज के समय, यमराज के अपने उसमें सेवा में चले जाते हैं। और जितने समय तक विदुर यहाँ पे रहते हैं उतने समय तक पितृलोक के जो मालिक हैं अर्यमा देव, वो यमराज का कार्य करते हैं। तो इसके आगे मैत्रेय मुनि जो है वो डिस्क्राइब करते हैं महाविष्णु का क्रिएशन, और महाविष्णु के क्रिएशन के बाद यूनिवर्सल फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिटेल है, कल हम इसको करेंगे, मेरी आज कुछ देर बाद ट्रेन भी है, तो आज थोड़ा जल्दी एंड करते हैं, कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल भगवान के विराट रूप के बारे में और महाविष्णु के क्रिएशन के बारे में और ब्रह्मा जी के क्रिएशन के बारे में ये हम कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कल इसी टाइम पे क्लास होगी, मैं मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा जहां भी मुझे जाना है। तो अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मीट टुमारो 7:30। ओके, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।